एसआर लेक्चर नंबर 767 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम श्रद्धात्मने नमः प्रणामो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायानं नमो लोये सवसाहुनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते मन्दित्तु सौवसिद्धे त्वमचलमनोभवं गतिं पते पोच्छामि समयपाहुड मिनमो सुदके बलिभणिदम् यह कुंद आचार्य भगवान का समय सार है और इस समय सार की गाथा 387 से लेके 389 इसको हम देख रहे हैं और हम पृष्ठ क्रमांक 93 पर आए हैं। कल हमने 49 भंग देखे थे, उसको दोबारा आपको देखना है कि आगे बढ़ना है? आगे बढ़ेंगे? नहीं नहीं, आप जो चाहो भाई, हमको क्या है। हाँ चलो आगे
देखो, ये हमने जो 49 भंग देखे थे कल, उसमें कृतकारित अनुमोदना और मनोवचन काय लिए थे। पहली पंक्ति में हमने कृतकारित अनुमोदना 3 रखे और दूसरी भी पंक्ति में 3 रखे, मन वचन और काय। अब इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन, पहले तो 3 और 3 दोनों लिए थे। कल आप थे कि नहीं थे? नहीं थे, अच्छा। तो ये 49 भंग कैसे किए थे उसको शॉर्ट में देखेंगे। क्रू यानी कृत, कारित उसके लिए का कहेंगे और अनुमोदित उसके लिए अ कहेंगे। तो ऊपर की पहली पंक्ति में क्रू का और अ लख, और नीचे की पंक्ति में म व का, मन वचन और काय। अब ये पहला भंग, भंग ने पॉसिबिलिटीज यहाँ बता रहे हैं। मैंने जो कुछ किया है, कराया है और अनुमोदना दी है मन से, वचन से और काय से, वो मेरा सब मिथ्या हो जाओ, ऐसी यहाँ प्रतिक्रमण की विधि बता रहे हैं। मुंह से बोलना वो प्रतिक्रमण नहीं है, परंतु वो तो बात आई थी, उसके प्रति ममत्व छोड़ देना ये बात वहां, और आत्मा में लीन होना वही प्रतिक्रमण है। परंतु उसके पहले ये तीनों ही लिए, ऊपर 3 और नीचे 3, ये पहला भंग हुआ, पहली पॉसिबिलिटी। अब यहां ऊपर तो 3-3 ही रखना है और नीचे 2-2 का जोड़ी लेनी, तो 3 में 2-2 की जोड़ी कैसे होगी? मन और वचन की होगी, मन की काय की होगी और वचन की और काय की होगी। तो दूसरा भंग कैसे होगा? जो मैंने यानी क्रू का अ ऊपर लिखना और नीचे क्या लिखना? म और व। तीसरा भंग क्रू का अ और म और का, ख्याल आता है कुछ? वहां ऐसा लिख बोलेंगे, जो मैंने किया है, कराया है, अनुमोदना दी है मन से और काया से, वो मेरा मिथ्या हो जाओ, ऐसे पूरा बोलना। पर हम उसको शॉर्ट में ले रहे हैं, भंग कैसे करना उसको देखना है। चौथा है ऊपर क्रू का और अ और नीचे के पंक्ति में व और काय, वचन और काय, ये दूसरा तीसरा चौथा हुआ, अब उसके आगे है। हाँ, अभी हमने दो दो लिए थे ना, तो अभी आगे वाले में एक एक रखना है, पांचवे छठे और सातवें में। ऊपर तो तीन रखना, क्रू का और अ, और नीचे के लाइन में एक बार मन मन लिखना, एक बार वचन लिखना और एक बार काय लिखना, यानी पांच नंबर, छह नंबर और सात नंबर हो गए, यानी नीचे के कॉम्बिनेशन हमने अलग अलग बदले। अभी ऊपर की पंक्ति में बदलेंगे। पहले भंग में हमने ऊपर भी तीन रखे थे और नीचे भी तीन रखे थे, बराबर ना। अभी ऊपर दो रखना और नीचे तीनों रखना, तो नीचे के पंक्ति में मन वचन काय तीनों रखेंगे और ऊपर दो दो की जोड़ी लेंगे। तो पहले क्रू और का, फिर क्रू और अ, और उसके पश्चात का और अ, नीचे तो मन वचन काय तीनों रखना है। तो इस तरह से आठवा, नौवा और दसवां भंग हो जाएगा। अब नीचे की पंक्ति में तीन के बदले दो दो ही रखने और ऊपर भी दो दो रखने, तो नीचे की पंक्ति में म और व कायम रखेंगे और ऊपर बदली करेंगे, तो ऊपर क्रू और का, नीचे म व, ऊपर क्रू और अ, नीचे म व, और ऊपर का और अ और नीचे म व, क्योंकि अभी नीचे को फिक्स रखना है। हाँ, कितने हुए ये? तेरह हुए। अभी नीचे जो हमने म और व लिखा था, तो उसके बदले म और का लिखना, फिक्स रखना। तो नीचे तो म और का तीन बार फिक्स रखेंगे और ऊपर बदली करेंगे क्रू और का, और नीचे म और का, ऊपर क्रू और अ, नीचे म और का, ऊपर का और अ, और नीचे म और का, ऐसे और तीन हो गए, सोलह हो गए ना। उसके बाद नीचे व और का रखना है। पहले म और व लिखा था, म और का लिखा है, अब व और का लिखना, वचन और काय, और फिर ऊपर दो दो की जोड़ी बदली करना, यानी सत्रह अठारह उन्नीस कैसे हो गए? क्रू और का ऊपर और नीचे व और का, फिर क्रू और नीचे व और का, और तीसरे में का और नीचे व और का। अभी ये तो दो दो की जोड़ी, नीचे भी दो दो हमने पलट के रखे, अब नीचे एक एक रखना है, अकेला म रखना और ऊपर दो दो की जोड़ी बदली करना, यानी ऊपर क्रू का और नीचे म, ऊपर क्रू अ नीचे म, फिर का अ नीचे म, म के तीन हो गए, अब व के तीन। सेकंड लाइन में अकेला व रखना है, ऊपर क्रू का और नीचे व, क्रू अ नीचे व, का अ नीचे व, मन के तीन हुए, वचन के तीन, अभी काया के तीन। वहां ऐसे ऊपर क्रू और का, नीचे अकेला का, ऊपर क्रू और अ नीचे का, फिर का और नीचे का, कितने हुए? अट्ठाईस हुए।
फिर से
दोबारा सत्ताईस में
हो गया।
अट्ठाईस में कारिक का और अ और नीचे का, ऊपर के का अर्थ है कारित और नीचे के का अर्थ है काय। अट्ठाईस हो गए। अब उन्तीस से लेकर नीचे तीनों रखना है और ऊपर एक एक रखना है, ऊपर क्रू रखना और नीचे मन वचन काय तीनों रखना, फिर ऊपर कारित रखना, का रखना और नीचे मन वचन काय रखना, फिर ऊपर अ रखना और नीचे म व का तीनों रखना। हो गए इतना लिख के? इकतीस हो गए। अब ऊपर एक एक लिखना और नीचे दो दो लिखने, ऊपर क्रू लिखना, नीचे म व, ऊपर का लिखना, नीचे म व लिखना, ऊपर अ लिखना, नीचे म व लिखना, ये तीन और हो गए, 34 हो गए। लिखे यहां तक के ठहरे थोड़ा, अब 35 नंबर का। पहले हमने म और व को नीचे लिखा था, अब म और का को नीचे लिखना और ऊपर एक एक लेना, यानी 35 नंबर में ऊपर क्रू और नीचे म का, 36 में ऊपर का और नीचे म और का, और 37 में ऊपर अ और नीचे म और का। अब नीचे तीसरा कॉम्बिनेशन कौन सा रह गया, व और का, वचन और काय का, और उसमें ऊपर एक एक को बदली करना, तो नीचे व का कायम रखेंगे तीन के लिए, और 38 नंबर में ऊपर क्रू और नीचे व और का, 39 में ऊपर का यानी कारित और नीचे व और का, 40 में ऊपर अ और नीचे व और का, 40 हो गए। अभी ऊपर भी एक और नीचे भी एक, तो ऊपर का हमको चेंज करना है और नीचे का कायम रखना है, तो नीचे म को तीन बार कायम रखेंगे, तो ऊपर क्रू और नीचे म, ऊपर का और नीचे म, ऊपर अ और नीचे म, ये तीन हो गए। फिर वचन के साथ ऐसे ही तीन, ऊपर क्रू और नीचे व, ऊपर का और नीचे व, और ऊपर अ और नीचे व। अब काया के भी तीन, ऊपर क्रू और नीचे का, ऊपर क्रू और नीचे, ऊपर का और नीचे का, और तीसरा ऊपर अ और नीचे का, ये 49 हो गए बंग। इसको हमने कल पढ़ा भी था और पढ़ते पढ़ते इसको देखा भी था। अब यहाँ आगे पढ़ते हैं, यहाँ भी कुछ विशेषता लिखी उन्होंने, 49 भंगों नी अंदर, गुजराती में कौन 49, हाँ 49 भंगों नी अंदर पहला भंग मा कृत कारित अनुमोदना ए त्रणे लीधा, अने तेना पर मन वचन काया ए त्रणे लगाव्या, ए रीते बनेला एक भंग ने तीन तीन नी समस्या थी यने संज्ञा थी ओळखी शकाय। उसके तीन और इसके तीन कॉम्बिनेशन लिए ना, ऊपर की हमने दो दो लाइन किए थे, तो यहाँ तीन और तीन की संज्ञा दिया दी उसको। बे थी चार सुधी ना भंगो मा, फुटनोट, हाँ ये स्टार जो है ना, कृत कारित अनुमोदना ए त्रणे लीधा ते बतावा, प्रथम त्रण नो आंकड़ो मुकवो, अने पछी ये आंकड़ों के बाद कॉमा नहीं चाहिए,
नहीं चाहिए।
आंकड़ो मुकवो, अने पछी मनोवचन काया ए त्रणे लीधा ते बतावा, तेनी पासे बीजो त्रण नो आंकड़ो मुकवो, आ रीते त्रण त्रण नी समस्या थई, एने उसकी संज्ञा 33 कहो, पण तीन तीन हम कहेंगे तो हमें याद यानी ख्याल आया आएगा कि तीन और तीन ऐसा लिखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यानी पहला भंग है वो तीन तीन का हुआ। बे थी चार सुधीना भंगों में कृतकारित अनुमोदना त्रणे लईने तेना पर मन वचन कायामाथी बब्बे लगाव्या, हाँ हमने देखा ना ऊपर तो तीन कायम रखे और नीचे के दो दो की, मन वचन, मन काया और वचन काया, ए रीते बनेला त्रण भंगों ने तीन दो नी संज्ञा थी ओळखी शकाय छे। नीचे देखना वो जो प्लस साइन है ना वो नीचे भी फुटनोट में, कृतकारित अनुमोदना त्रणे लीधा ते बतावा, प्रथम त्रण नो आंकड़ो मूको, अने पछी मन वचन कायामाथी बे लीधा ते बतावा, त्रण नी पासे बे नो आंकड़ो मूक्यो मूकवो, ए रीते तीन दो तीन बे नी संज्ञा थई। 32 कहो या तीन बे कहो, अब दो तीन चार हो गए, अब 5 થી 7 સુધીના ભંગોમાં કૃતકારિત અનુમોદના ત્રણે લઈને તેના પર મન વચન કાયામાંથી એક એક લગાવ્યું. આ ત્રણ ભંગોને 3-1ની સંજ્ઞાથી ઓળખી શકાય છે. પહેલા કૃતકારિત અનુમોદના 3 લઈએ ઓર બાદ મેં મન વચન ઓર કાયા અલગ અલગ લ્યા. 8 થી 10 સુધીના ભંગોમાં કૃતકારિત અનુમોદનામાંથી 2 લઈને અભી ઉપર કી લાઈન જો હમને કી થી ઉપર ઓર નીચે કી થી યહાં તો સાઇડ બાય સાઇડ લિખ રહે હૈ તો ઉસમે 2-2 કરના ઓર તેમના પર મન વચન કાયા ત્રણે લગાવ્યા. આ ત્રણ ભંગોને 2-3ની સંજ્ઞાવાળા ભંગો તરીકે ઓળખી શકાય છે. એને ઉપર કે યા પહેલે કૃતકારિત મેં 2-2 લેના ઓર બાકી વાલે જો હૈ વો 3-3 લેના. 11 થી 19 સુધીના ભંગોમાં કૃતકારિત અનુમોદનામાંથી 2 લઈને તેમના પર મનોવચન કાયામાંથી 2 લગાવ્યા. આ 9 ભંગોને 2ની સંજ્ઞાથી ઓળખી શકાય. 20 થી 28 સુધી ભંગોમાં કૃતકારિત અનુમોદનામાંથી 2 લઈને તેમના પર મનોવચન કાયામાંથી 1-1 લગાવ્યું તો 2 અને 1 હોગા ઉસકા. આ 9 ભંગોને 2-1ની સંજ્ઞાવાળા ભંગો તરીકે ઓળખી શકાય. 29 થી 31 સુધીના ભંગોમાં કૃતકારિત અનુમોદનામાંથી 1-1 લઈને તેમના પર મનોવચન કાયા ત્રણે લગાવ્યા. અભી 1-1 ઉપર 1 લગાવ્યા નીચે 3 લીએ. આ 3 ભંગોને 1-3ની સંજ્ઞાથી ઓળખી શકાય છે. 32 થી 40 સુધીના ભંગોમાં કૃતકારિત અનુમોદનામાંથી 1-1 લઈને તેમના પર મનોવચન કાયામાંથી 2 લગાવ્યા. આ 9 ભંગોને 1-2ની સંજ્ઞાથી ઓળખી શકાય. અને 41 થી 49 સુધીના ભંગોમાં કૃતકારિત અનુમોદનામાંથી 1-1 લઈને તેમના પર મનોવચન કાયામાંથી 1-1 લગાવ્યું. આ 9 ભંગોને 1-1ની સંજ્ઞાથી ઓળખી શકાય. બધા મળીને 49 ભંગ થયા. એ તો હમને અપને તરીકે સે ઉસકો દેખા હૈ, બાત તો વહી હૈ. ઉસકો ઉન્હોને 3-3, 3-2, 3-1 એસે અલગ અલગ સંજ્ઞા દી હૈ. અભી હમ કલશ દેખેંગે, ક્યોંકિ ઇસકે ઉપર તો પ્રવચન હમને પહેલે પઢા થા. વહાં તો ઉન્હોને લિખા થા કે 49 થી 49 ભંગ લગાડવા અને એમને સમજવા.
મોહાદ્યદહમકાર્ષમ
સમસ્તમપિ કર્મ તત્ પ્રતિક્રમ્ય આત્મનિ ચૈતન્યાત્મનિ નિષ્કર્મણિ નિત્યમાત્મના વર્તે. શ્લોકાર્થ દેખતે હૈ ક્યા હુઆ?
પેજ નંબર 94 પર હૈ.
હા, અભી જો હમને ભંગ દેખે ઉસકે હી અગલા હી પૃષ્ઠ હૈ. ઉસકે પ્રવચન તો બાદ મેં હૈ. અબ યહાં તક હમ પહેલે ઇસકો પઢ કે ફિર આગે જાયેંગે. ये श्लोक और उसका भावार्थ देखेंगे, बाद में प्रवचन देखकर फिर वो नहीं, यहाँ प्रतिक्रमण कल्प समाप्त करेंगे, बाद में आलोचना. देखो श्लोकार्थ देख रहे हैं, पेज नंबर 94. यद अहम मोहात अकार्षम, जे मैं मोहती अर्थात अज्ञान थी भूतकाल मा कर्म कर्या. એ અકારશમ હુઆ, એ તો એ ક્રૂ ધાતુ કા વો અકાર શબ્દ તૈયાર, અકારશમ. તત સમસ્તમ અપિ કર્મ પ્રતિક્રમ્ય, તે સમસ્ત કર્મને પ્રતિક્રમીને નિષ્કર્મણી કરના, નિષ્કર્માણી હુઆ, નિષ્કર્મણી ચૈતન્ય આત્મની, આત્મની આત્મના નિત્યમ વર્તે. ક્યા કહેતે હૈ? चैतन्य आत्मा जो है उसका ये विशेषण है. कैसा? निष्कर्मणी चैतन्य आत्मा, यानी चैतन्य आत्मा जो है वो कैसा है? निष्कर्म रूप है. तो कहते हूँ निष्कर्म अर्थात सर्व कर्मों से रहित चैतन्य स्वरूप आत्मा मा आत्मा थीज यानी पोता थीज आत्मना है ना आत्मनी आत्मना नित्यम वर्ते पोता थीज निरंतर वर्तु छू एम ज्ञानी अनुभव करे छे यानी उसके निरंतर ज्ञान चेतना चलती है। इसको फिर पढ़ेंगे हम अर्थ को लेते केवल जे में मोहती अर्थात अज्ञान थी कर्म कर्या भूतकाल मा कर्म कर्या ते समस्त कर्म ने प्रतिक्रमी ने हूँ निष्कर्म चैतन्य स्वरूप आत्मा मा आत्मा थीज निरंतर वर्तु छू भावार्थ भूतकाल मा करेला कर्मणे 49 भंग पूर्वक मिथ्या करनारु प्रतिक्रमण करीने ज्ञानी ज्ञान स्वरूप आत्मा मा लीन थईने निरंतर चैतन्य स्वरूप आत्मानो अनुभव करे। अपने को ज्ञान रूप ही अनुभव उसका चलता है। पहले उसने प्रतिक्रम राग के प्रति उसके पूर्व में किए हुए राग के प्रति उसने प्रतिक्रमण करके अभी वो अपने को आत्मा रूप चैतन्य रूप ही अनुभव चल रहा है उसका। तेनु आ विधान एटले विधि छे। मिथ्या कहेवानु प्रयोजन आ प्रमाणे छे। जेवी रीते कोईए पहला धन कमाईने घर में राख्यो तू पछी तेना प्रत्ये ममत्व छोड़्यू त्यारे तेने भोगवना अभिप्राय न रह्यो। ते वक्ते भूतकाल में जे धन कमायो हतो ते नहीं कमाया समान छे उसके प्रति अभी ममत्व नहीं रहा वो तो है नहीं बराबर है अभी। तेवी रीते जीवे पहला कर्म बांध्यो हतुं पछी जारे तेने अहित रूप जाणीने तेना प्रत्ये ममत्व छोड्यू अने तेना फळमां लीन न थयो त्यारे भूतकाळमां जे कर्म बांध्यो हतुं ते नहीं बांध्या समान मिथ्या ज छे। वो उसका अपना जो कोई फल होना है वो देके निकल जाएगा ये नहीं ले रहा है। हम कहते ना किसी ने भीख दी और आपने नहीं ली तो क्या होगा उसका उसके पास रहेगा ये कर्म फल देके निकल जाएंगे और उस समय उसमें लीन नहीं है तो दोबारा कर्म नहीं बांधेंगे। तो एक एक अपना अपना जा रहे हैं। अभी हम पहले प्रवचन पढ़ेंगे फिर दोबारा इस बात पर आते हैं।
115 पृष्ठ पर आप आइएगा। हवे आ कथन ना कलश रूपे काव्य कहे छे। कलश 226 श्लोकार्थ ऊपर नु प्रवचन। जे मे मोहती अर्थात अज्ञान थी भूतकाल मा कर्म कर्या। कर्म कर्या ने कौन से कर्म किए ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय। हाँ बेन कौन से कर्म किए उसने 8 कर्मों में से। जे मे मोहती अर्थात अज्ञान थी कर्म कर्या कई कौन सा वही द्रव्य कर्म में कौन से किसको लेना सभी 8 को आप शू कहो छो आदि सब। हाँ अच्छा आप क्या कहते हैं 8 ही कर्म। वीरेश भाई को कुछ जवाब देना पड़ेगा अभी। याद नहीं कोई बात नहीं बंदा आप कहेंगे मोहनी कर्म। अच्छा अच्छा बापा 7 कर्म आयु छोड़ के 7 कर्म। बेन आप कुछ कहेंगे 8 कर्म। डॉक्टर आप क्या कह रहे हैं। अरे ये तो सबसे भाव अलग है इनका। देखो देखो फिर से पढ़ते हैं। बेन मैं जानता हूं कि आप केवल सुनने का काम करते हैं इसलिए मैं आपको मिसलीड करूंगा कि आप उससे ध्यान रखें कि भाई क्या बात चल रही है। यहाँ द्रव्य कर्म की बात ही नहीं 7 कर्म की भी नहीं और 8 कर्म की भी नहीं मोहनी कर्म की भी नहीं है। फिर से देखो पढ़ो भाई क्योंकि अभी तो उसने बताया और आपने हाँ 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 किया। देखो देखो जे में मोह थी अर्थात अज्ञान थी कर्म कर्या ते समस्त कर्म ने प्रतिक्रमी ने हूँ निष्कर्म अर्थात सर्व कर्मों थी रहित चैतन्य स्वरूप आत्मा मा आत्मा थी ज पोता थी निरंतर वर्तु छू एम ज्ञानी अनुभव करे छे। अभी मुझे आपसे पूछना है, ये ज्ञानी है वो कौन सा द्रव्य है? ज्ञानी है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य को क्या करेगा? कुछ जास्ती बढ़ाएगा, कम करेगा, उसका निर्जरा करेगा कि नहीं? कुछ नहीं। तो उसने जो भाव कर्म किए थे उसके निमित्त से जो कर्म बंधे थे उसकी बात नहीं, वो जो भाव कर्म है उससे वो प्रतिक्रम, अभी उसका जो उदय आएगा वो कर्मों का, उसमें ये दोबारा जुड़े ऐसा न होते वो स्वरूप में गुप्त हो जाएगा, तो उसने उसका प्रतिक्रमण किया। और हम तो स्वरूप में जाते ही नहीं और रोज प्रतिक्रमण करते हैं। ख्याल में है? देखो फिर से, जे में मोह थी अर्थात अज्ञान थी, भूतकाल में कर्म करिया, भूतकाल में हमने राग द्वेष के परिणाम किए और उससे कर्म बंधा, तो ते समस्त कर्म ने, हाँ जी, वो द्रव्य कर्म ही बंधेंगे। हाँ, लेकिन उसका कारण देखो, देखो हम कर्मों से प्रतिक्रमण करेंगे क्या? अपने भाव कर्मों से करेंगे। हम क्या कहेंगे बताओ? मिथ्या था, तो मिथ्या क्या था? मेरे परिणाम के कर्म, वो तो ऐसी बात होगी सारे दुनिया को शांति मिले, सबका भल, क्या बोलते हैं, बहुत उसको फ्लरिशमेंट हो जाए, ये हो जाए, वो जाए। शांति पाठ में बोलना बात अलग है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होता है। ये भी हम भाव कर रहे हैं तो छिंदम छिंदम भिन्न भिन्न, वो तो तुमको मालूम ही नहीं, तो क्या बतावे? ख्याल में? यहाँ तो भाव कर्म की बात है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बंधेगा द्रव्य कर्म, उदय आएगा द्रव्य कर्म का, पर उसमें जुड़ना नहीं जुड़ना अभी अपने हाथ की बात है ना। देखो मैंने आपको कहा था, प्रतिक्रमण कहो, प्रत्याख्यान कहो या आलोचना कहो, एक ही समय में तीनों हो रहे। ख्याल में आया बेन? एक ही समय में तीनों। हाँ, क्योंकि तू जब स्वरूप में एकाग्र हुआ है तो भूतकाल के समय में जो तूने भाव कर्म किया था, उस समय जो कर्म बंधे थे, उसका जो अभी उदय आ रहा है उसमें तू नहीं जुड़ रहा है, इसलिए तूने पूर्व के जो तूने भाव किए थे उससे तू हट गया है। उसी समय भविष्य में तेरे कोई ऐसे परिणाम हो जाए कि जिससे तुझे आगे जाके भोगना पड़े, तो अभी तो तू स्वरूप में गुप्त है ना, तो आगे के कोई बांधने का सवाल ही नहीं है, तो उससे भी तू हटा है, जो हुई नहीं बात उससे भी अभी हटा है, और जो वर्तमान में जो कोई कर्म उदय आ रहे उससे तू जुड़ नहीं रहा है, स्वरूप में गुप्त है। ये स्वरूप में गुप्तता एक समय में, मतलब एक काल में हो रही है, और उसको जिस अपेक्षा से तुम देखो, तो भूतकाल की अपेक्षा से प्रतिक्रमण, भविष्य की अपेक्षा से प्रत्याख्यान, और वर्तमान की अपेक्षा से आलोचना। ये बात हमने देखी थी, हम भूल गए, कोई बात नहीं, हम ये बिल्कुल याद रख रहे हैं ना, ऐसा क्या चल रहा है। ये तो गाथाएं जो है ना बहुत ही अलौकिक है। अब बात ऐसी हुई, एक मेरे हिसाब से हो, ये बात डॉक्टर साहब ने वहां ली थी अमेरिका में, और मेरे बहन ने मुझको टेलीफोन पे बोला कि तेरे को प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना के बारे में जो कुछ मालूम है मुझके लिख के भेज। उस समय वो नहीं था, क्या बोलते हैं, ईमेल, तो मुझे यहाँ उसके ऊपर बोलना है। मैंने कहा तू क्या बोलेगी इसके ऊपर, ये बात वहां का कोई सुनेगा क्या? और सुनेगा तो हजम होगा क्या उसको? क्योंकि हमें तो बस कुछ ना कुछ क्रिया करे, तो हमने प्रतिक्रमण किया, हमने अमुक अमुक किया और तमुक तमुक किया, ऐसी मान्यता चल रही है। यहाँ तो भाई स्वरूप में जो गुप्तता है, स्वरूप में जो लीनता है, आपको मालूम है स्वरूप में लीनता ही उपवास है? नहीं मालूम है क्या मैं पूछ रहा हूँ? ख्याल में है? स्वरूप में लीनता ही प्रत्याख्यान है, स्वरूप में लीनता ही जिनेन्द्र भगवान की सांची भक्ति है। बोलो अभी क्या कहना है? लेकिन हम जो अपेक्षा देखेंगे उसके अनुसार होगा। ख्याल में आया। ये निश्चय यानी जो यथार्थ बात है उस बात पे जोर दिया है कुंद कुंद आचार्य ने, और वो जोर कम हुआ इसलिए अमृत चंद्राचार्य ने उसको और पॉलिश किया, और वो भी हमारे गले नहीं उतर रहे तो स्वामी जी ने उसको और क्या बोलते हैं मुलायम करके अपने गले में उतार रहे, फिर भी अटकता है। फिर से देखो कहाँ गया, हाँ यहाँ तो हमने देखा था, यहाँ लिख रहे ना हूँ निष्कर्म अर्थात सर्व कर्मोथी रहित। ऐसा जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है ये आत्मा मां आत्मा थी एटले पोता थी ज निरंतर वर्तु छू, निरंतर वर्तु जाने मैं अपने स्वरूप में ही गुप्त रहता हूँ, और बाय चांस अगर मैं स्वरूप से बाहर आया तो मेरी शुद्ध परिणति तो निरंतर चालू है, उसको निरंतर वर्तु चुका। अगर ये मुनि अवस्थाएं निरंतर वर्ते तो फिर केवल ज्ञान की क्या जरूरत है। ख्याल में आया भाई, ऐसी बात नहीं है। निरंतर वर्तु चाहिए उनको अन्य किसी बात में बिल्कुल अटैचमेंट नहीं रही है। अब कहते जो आ चारित्र नो अधिकार छे, सब चारित्र सम्यक दर्शन विना कधी होतु नथी। अने आमे प्रतिक्रमण करे तो शू करे, कई जो कुछ बोलना है बोले, पर यहाँ तो कह रहे हैं कि हम अपने स्वरूप में लीनता करना यही हम प्रतिक्रमण कह रहे हैं, और वो तो हमें हो नहीं रहा है, स्वरूप में लीनता तो हुई नहीं हमारी। तो कह रहे हैं आ चारित्र नो अधिकार छे, तो उसमें पहले में पहले चारित्र सम्यक दर्शन बिना कदी होतु नहीं। ये परसों मैंने आपको बताया कि नहीं, याद नहीं है मुझे, आज फिर से याद आ रही है उसकी। एक भाई का फोन आया था, वो कहते मैं हमारे कोई एक्स वाई जेड बहन है वो तो दर्शन प्रतिमा धारी है। अच्छा, हाँ जी, नहीं नहीं वो नहीं, वो नहीं, वो दर्शन प्रतिमा। तो दर्शन प्रतिमा तो जब आपका हमने सुना तत्वज्ञान पाठ माला तो वो उसमें सुनाई रही है दर्शन प्रतिमा तो अलग चीज है। तो हम तो ऐसा ही मानते थे कि जाके रोज भगवान के दर्शन करना ये मेरे लिए प्रतिज्ञा है और वह दर्शन प्रतिमा है। लेकिन जो बात आप बोल रहे हो यहाँ के लोग सुनकर चकित हो गए। मैं तो कहूंगा ये बात, ये कौन सी है, उमरगा नाम का गांव है और दूसरा एक चंद्रपुर नाम का गांव है, वहां रेगुलरली पब्लिक के लिए मेरी कैसेट चलती है। ख्याल में, तो वो कहते कि ये दर्शन प्रतिमा जो है, दर्शन प्रतिमा यानी सम्यक दर्शन जिसके चौथे गुणस्थान से बढ़कर पांचवे गुणस्थान यानी दो कषाय के चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो देश चारित्र की प्राप्ति हुई है उसको सम्यक दर्शन है, और वो तो उससे ढले नहीं गिरे नहीं तो बार बार अपने स्वरूप में एकाग्र होवे उसको दर्शन प्रतिमा, सम्यक दर्शन प्रतिमा है वो। लेकिन हम नाम का जो का त्यों ट्रांसलेट करते हैं, और जिनेन्द्र भगवान के दर्शन किए मैं, अरे आज मैं गया नहीं, ठहरो ठहरो मैं जाके आता हूँ बाद में खाना खाता हूँ, ये हमारे घर में हो अरविंद भाई एक यहीं रहने वाले लोग आते थे, बोले हमको दर्शन करने को आने का है। हाँ जरूर, हमारा टाइमिंग सुबह 7:30 से 8 बजे तक। नहीं 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 वो तो हम 11:30 11 बजे आएंगे। मैंने कहा हम नहीं आएंगे, तुम्हारा खाना पीना सबका ऑफिस को सबको भेज दिया कुछ खाया फिर इधर आके दर्शन करो वो नहीं जमेगा। तो मेरे भाई के घर में जाने लगे, अभी वहां भी बंद हो गए मेरे ख्याल से। क्यों, बात ऐसी है, यहाँ तो रोज स्वाध्याय चलता है और स्वाध्याय में वो बीच में से आके दर्शन करे ये तो हमारे लिए प्रदर्शन हो जावे। फिर लोगों को अपने सहूलियत के अनुसार दर्शन करना है, धर्म करना है, अपने सहूलियत के अनुसार नहीं होता है। वे उसके पीछे भी तपस्या है। दर्शन प्रतिमा ली है तो भोजन करने के पहले या अन्न पानी ग्रहण करने के पहले दर्शन होना चाहिए, तो उससे कुछ मायना रखता है। और आजकल का जमाना तो बेटी है, तो पहले टीका दर्शन बाद में, ऐसी बात है। तो क्या बात हुई? चारित्र सम्यक दर्शन विना कदी होतु नथी। समकीति ने पण ज्यां सुधी पुण्य पाप नु परिणमन छे त्यां सुधी चारित्र नथी। यानी चौथे गुण स्थान वर्ती जो जीव है, पंचम गुण स्थान वर्ती जीव है, उनके भी चारित्र नहीं है। कहा है जो मुनि? हाँ साहब, ऐसा नहीं लेना। आप कह रही हैं कि चौथे पांचवें गुण स्थान वर्ती जीवों के शुद्ध परिणति चल रही है तब उनको चारित्र है क्या नहीं है? मैं उत्तर देता हूं। पहले यहां जो बात लिखी उसको हम देखेंगे। चारित्र किसको कहना? तो पहले मैंने आपको बताया था कि मुनि योग्य यानी जिनके तीन कषाय के चोकड़ी का अभाव हुआ है और जिनके सकल चारित्र की प्राप्ति हुई है, उनको ही चारित्री कहेंगे, उनको ही संयमी कहेंगे, संयत कहेंगे। अरे साहब, हमारे सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को भी तो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ का व्यय हुआ है, समझो अनुदय है, समझो, जिसके कारण उनके भी एक कषाय चुकड़ी के अभाव पूर्वक तो वितरागता निश्चित रूप से है ना? हाँ है। और वहां भी स्वरूपाचरण चारित्र है ना? हाँ है। मैंने कहा था आजकल झोपड़ी वालों के पास भी 1.5-2 लाख के नीचे झोपड़ी नहीं मिलती है, उसकी वो लखपति है। और आप 99 लाख के पति हैं, तो दोनों की एक ही ग्रेडिशन हो गई कि नहीं? एक अपेक्षा से है कि दोनों लखपति हैं, लेकिन दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो वो नोवेयर। अंबानी हमारा जो है कितने करोड़ जो भी है आप जानते हैं, इंश्योरेंस उतारा होगा ना? हाँ, तो इनके इतने करोड़ हैं, तो वो भी लखपति है एक अपेक्षा से। तो क्या ये झोपड़ी वाला लखपति और वो लखपति? ये तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्ट्रडिक्शन लगे ऐसा बता रहा हूं, लेकिन यहाँ चारित्र जो है वो चारित्र तो संयमी व्रती जीवों के कहा है चरणानियोग की अपेक्षा से। वहां चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को चारित्र नहीं है ऐसी भी बात आएगी। किस अपेक्षा से? क्वांटिटी, अंदर जो डेप्थ है, जो स्थिरता है, उसकी अपेक्षा से। अब आप जो कह रहे हैं चौथे गुण स्थान वर्ती पंचम गुण स्थान वर्ती शुद्ध परिणति चल रही है, तो जितने कषाय चोकड़ी का अभाव जो जिस गुण स्थान में होगा उसके अनुसार उसका चारित्र भी वहां सम्यक रूप से परिणमित हो रहा है। उसको सम्यक चारित्र और मिथ्या चारित्र दोनों साथ में नहीं है, उसको तो केवल सम्यक चारित्र ही है, लेकिन उसकी मुनि के योग्य के आगे कोई वैल्यू नहीं है। आप जानते हैं पंचम गुण स्थान वर्ती जीवों का दूसरा नाम कौन सा है डॉक्टर? हाँ, देश विरति। और कुछ? संयमा संयम, या संयता संयत, या विरता विरत, या देश चारित्री जो आपने बताया, उनको अनुव्रति भी कहते हैं एक अपेक्षा से। लेकिन वो महाव्रत जो है उसके अपेक्षा से वो कुछ नहीं है। और डिटेल में जानना चाहती है तो जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव है वह तो अविरति है। जो 6 प्राणी संयम और इंद्रिय संयम जो है, हाँ, वो किसी को नहीं पालता है। और ये भी तो क्या है, इसमें से 12 में से एक का खाली पालन होता है, इनके 11 तो वैसे के वैसे रहे हैं, इसलिए उनको संयमा संयमी कहा है। इस अपेक्षा से वे अनुव्रति जरूर है लेकिन वो व्रति नहीं है। और व्रति को चारित्र लिखा ना भाई, चारित्र किसको है? तो ये तो हमें सम्यक दर्शन का तो कोई ठिकाना नहीं है और हम चारित्र पालते ऐसा मानेंगे तो बात सही नहीं है। ये परसों बात आई थी ना, मैंने बताया था, डालस से फोन आया था हमको, बोलते एक तो आदमी बताओ आपके यहाँ ये फला फला साइड से, एक तो मुनि हुआ हुआ बताओ, एक तो मुनि पैदा किया है तुमने। अरे वाह, मुनि पैदा होता है हा? अरे तू अपने बालों को पैदा नहीं कर सकता है, मुनि को क्या पैदा करेगा, समझ तो सही। अरे वो तो अंतरंग की अवस्था है भाई, वो कहीं बाहर से थोप थोप के होने वाली थोड़ी है, ये अंतरंग में वितरकता आएगी, वो दूसरे से आएगी ना, जिनेंद्र भगवान से आएगी कि किसे दूसरे तीसरे से किसी से आएगी, ये बात ही मालूम नहीं है ना। इसलिए ऐसे मन में जिसको हम कहते हैं कल्लोल उठते हैं, क्योंकि हमने किसी एक पक्ष का ये किया है, पक्षपात किया है जिसको हम कहेंगे। तो अभी देखो, अभी हम अपनी यहां चलते हैं, क्या कह रहे, देखो, चारित्र सम्यक दर्शन विना कदी होतु नथी, समकीति ने ज्या सुधी पुण्य पाप नु परिणमन छे त्या सुधी चारित्र नथी। ये चारित्र नथी यानी समझ में है ना डॉक्टर, ये चारित्र नथी यानी मुनि योग्य चारित्र नथी। सम्यक दर्शन थता ज रागना करता भोक्तापना नी बुद्धि तो छूटी गई छे पण अस्थिरता हजू छे। फरक समझ में आया हुँ? और इसी अपेक्षा से इन कंपेरिजन मुनियों को स्थिरता अधिक है। आई कहे छे अस्थिरता ना राग ने हूँ छोड़ी दऊं छू अने निजानंद स्वरूप मा पोता थीज लीन थाऊं छू आनु नाम प्रतिक्रमण छे। अभी क्या देखो फिर से आपने बोला ना ये द्रव्य कर्म द्रव्य कर्म द्रव्य कर्म, यहाँ क्या लिखा नीचे से दूसरी लाइन, आई कहे छे ये अस्थिरतानो राग, ये अस्थिरतानो राग यानी क्या हो गया बेन, पुण्य पाप के परिणाम मोह राग द्वेष, मोह नहीं राग द्वेष, तो ये भाव कर्म की बात हुई ना। तो समझा रहे हैं अस्थिरताना राग ने हूँ छोड़ी दऊ छू, ये छोड़वानु केवी रीते, तो कहे छे हूँ निजानंद स्वरूप मां पोता थी ज लीन थाऊ छू अने आने प्रतिक्रमण कहे छे। बहु आकरी वात छे हो बेन, तकलीफ थाय तो माफ करजो, तो वात तो अहींया छे बाबा। पूर्वे अज्ञानवश परमा रोकाई ने जे शुभाशुभ भाव करिया ते, आ गई बात, शुभाशुभ भाव करिया क्यारे, भूतकाल मा पूर्वे ते सर्वने प्रतिक्रमणी प्रतिक्रमी ने हूँ निष्कर्म चैतन्य स्वरूप आत्मा मा, यानि मेरा स्वभाव कैसा है, ये चैतन्य मेरा जो स्वभाव है वो कैसा है, निष्कर्म है, यानि ये शुभाशुभ भावती रहित है हुँ? आत्मा मा केवो छे, आत्मा चैतन्य स्वरूप ये पन केवो छे निष्कर्म, ये निष्कर्म यानी आठ कर्म की बात नहीं है, राग द्वेषादि जो परिणाम है भाव कर्म थी रहित हाँ? अभी उसको आपको द्रव्य कर्मों को भी लगाना है तो लगाओ, पर यहाँ तो शुभ शुभ भाव की बात चल रही है। आत्मा मा आत्मा थी ज निरंतर वर्तु छू भाई, शुभ भाव छे ते पण दोष छे, ये ऐसा क्यों लिखा ते पण, यानी और क्या बात बताना चाहते थे, हाजी हाँ, अशुभ भाव को तो सारे दुष्कृत कहते हैं लेकिन यहाँ कह रहे शुभ भाव पण दोष छे दुष्कृत छे, तेथी ज्ञानी तेनु प्रतिक्रमण करे छे। अभी बात मैं जो कह रहा था जब आपको भरोसा नहीं था, अभी डॉक्टर आपने स्वामी जी बता रहे तो थोड़ा थोड़ा तो अभी क्या करें, वो तो है नहीं, उनको कैसा अपोज करे हुँ? आ बधा उपाश्रय मां बेसी ने प्रतिक्रमण करता हता ने, ए प्रतिक्रमण नहीं बापा। ये उपाश्रय किस में होता है हा? ये साइन में है ना इधर अपने हा? तो कहते हैं ए बेसी ने प्रतिक्रमण करता हता ने, ए प्रतिक्रमण नहीं बापा, ए तो रागनी क्रिया भगवान, जो हिंसादीना अशुभ भावो त्याग करीने दयादीना शुभ भावमा धर्मात्मा वर्ते ते व्यवहार प्रतिक्रमण छे। तो व्यवहार प्रतिक्रमण किसको होगा बेन? हाँ थोड़ा सा और नजदीक सही उत्तर चाहिए। आपका सही उत्तर है पर उससे भी सही चाहिए। व्यवहार प्रतिक्रमण किसको होगा? जय बहन क्या बात है, फर्क समझ में आया बहन? देखो आपके सामने हो, मैंने कुछ नहीं सिखाया उनको, वो अपने अंदर से बोले। जिसको निश्चय होगा उसके ऊपर व्यवहार का आरोप आएगा, ख्याल में आया? तो क्या कह रहे हैं? देखो कह रहे हैं कि हिंसा दीना अशुभ भावनो त्याग करीने दया दीना शुभ भाव मा धर्मात्मा वर्ते ते व्यवहार प्रतिक्रमण छे, पन ते व्यवहार प्रतिक्रमण दोष छे, दुष्कृत छे। स्वामी जी तो आज बहुत क्लाइमैक्स बता रहे आई कहे छे ते सर्व दोष ने छोड़ी ने हूँ चैतन्य स्वरूप आत्मा मा पोता थी ज वर्तु छू। भूतकाल मा करेला सर्व कर्मो नू आ प्रमाणे प्रतिक्रमण करू छू। भाई विकारना सर्म भावो ती हठी, ये विकारना सर्व भाव यानी ये शुभ शुभ भाव, ये कर्म तो ये जीव कर नहीं रहा है तो उसका विकार वो नहीं होगा। हाँ साहब, विकारना सर्व कर्मो ती हठी स्वस्वरूप मां शुद्ध चैतन्य स्वरूप मां लीन थबुंग ते सत्यार्थ प्रतिक्रमण छे। आहा शुभाशुभ भाव जीवनी एक समय नी अवस्था मां तथा जीवना परिणाम छे, परंतु चैतन्य ना स्वभाव नो तेमा अभाव छे। केमा? शुभाशुभ राग मां। તેથી તેવો વિભાવ પરિણામ છે, તેવો સ્વરૂપમાં તદ્રૂપ નથી। તદ્રૂપ યાને ક્યાં? તત્રૂપ, હા ગુજરાતીમાં તે રૂપ। તત્રૂપ યાને ઉસ રૂપ, તદ્રૂપ આપ જો કહે રહે તે રૂપ, બિલકુલ। યાને ક્યાં કહેના ચાહતે હૈ? યે જો વિભાવ પરિણામ હૈ વહ જીવ કા સ્વભાવ નહીં હૈ, और स्वभाव उस रूप नहीं होता है। कैसे? राग रूप। तेथी ते सर्व विभाव ने छोड़ी ने कहे छे निष्कर्म शुद्ध चैतन्य स्वरूप मां वर्तु छू। आ गई ना? बिल्कुल बिल्कुल हूबहू बात। अर्थात राग रहित निष्कर्म निर्विकल्प दशा ने हूँ प्राप्त थाऊ छू। जुओ आ निर्मल चारित्रणी दशा छे, आत्माना भान सहित तेमाज विशेष लीनता रमणता करता जे शुद्धिनी वृद्धि थाय ते चारित्र छे अने ते धर्म छे। देखो यहाँ दो तीन बातें बताई उन्होंने। क्या बताई? ये नीचे से दूसरी लाइन में पढ़ रहा हूँ, इसके यानी ऊपर से चौथी लाइन। आत्माना भान सहित, ते आत्मानु भान कोने होए बेन? सम्यक दृष्टि है ना? तो सम्यक दर्शन जेने थयुं छे ते आत्माना भान सहित तेमाज विशेष लीनता एटले शुं? रमणता करता। ते विशेष लीनता ने रमणता कोने होय? तो मुनिराजो ने होय। तो कहे छे ते जे शुद्धिनी वृद्धि थाय ते चारित्र छे, अने ए चारित्र ने धर्म कहेवाय छे। जो दरेक पदार्थ पोताना पर्याय रूप कार्य ने करे छे पण बीजाना परिणाम नो ते करता नथी, आ भाषा बोलाय छे ने? ते शब्द वर्गना नु यानी भाषा वर्गना नु कार्य छे। शब्द वर्गना ना परमाणु भाषा रूपे उत्पन्न थई रिया छे, आत्मा तेनो करता नथी। लोकोने आवो भेद अभ्यास नहीं एटले आ वाद गळे उतरवी कठिन लागे छे। पण भाई आ तो परमार्थ सत्य छे। परमार्थ यानी अल्टिमेट, અને એકલું અમૃત છે। અરે બાપુ, એક પરમાણુની અવસ્થાને બીજો પરમાણુ ન કરી શકે તો તેના કાર્યને આત્મા કરે એ કેમ બની શકે? કદી ન બની શકે। तो आप कहेंगे ये कैसा पॉसिबल है कि एक परमाणु जो है वो दूसरे परमाणु का कार्य नहीं करता, ऐसा थोड़ी है। तो देखो देखो, हम देखते हैं, हमको यहाँ कोई मार लग गया, जख्म हो गई, तो ये हाथ को दुखेगा कि नहीं? अच्छा, इधर लगा है तो उसके बाजू वाले इधर के परमाणु को, मतलब भाग को कुछ नहीं होगा। फुंसी हो जाती है तो यहाँ पीला पीला हो जाता है, ऐसा जरा उधर हाथ लगे तो दुखता है, तो इधर हाथ लगे तो यहाँ यही बताते हैं कि पूरा शरीर तो काला है, फुंसी ही वो गोरी है, मतलब पीली है। तो पूरा होना चाहिए था ना, ऐसा नहीं, एक परमाणु बीजा परमाणु नु कार्य करतो नथी, तो केम करतो नथी, ये आपड़े पूछू जो है। बोलो आप। हाँ, तुम्हारी बात साची के बन्ने परमाणु स्वतंत्र छे, पण ये आपड़े केवी रीते सिद्ध करी शकीए? बहुत अच्छा, बन्ने ना स्वचतुष्टय जुदा छे, अभाव में लगाना। कयो कयो तमे बोलो बेन, परमाणु नी बात छे बेन? हाँ बोलो मंदा। अरे तमे हाचू बोल्या था, पण कन्फर्म नता, मने खबर छे, एटला माटे तो त्रण वार पूछो, तो तमे एक वार आवजो एक बाजू। अरे कुछ तो बोलो जे। या तो घोड़ा बोलो या तो चतुर्नार बोलो। बेन, मेरी ये पद्धति है, मैं थोड़ा सा ऐसा सचेत करता हूँ, क्योंकि हम गड़बड़ कर रहे हैं ना, तो आंखों से पता ही लगता है, चेहरे से पता ही लगता है कि ये कंफर्म नहीं है, ख्याल में आए तो फिर और मजा आता है तकलीफ देने को। देखो, परमाणु की बात होती है ना बहन, तो उसमें अत्यंत अभाव लगेगा, दो भिन्न द्रव्य हो गए ना, भले सजाती है हा? और उनका जो स्कंद है, पर्याय जो लगेगी तो वो अन्योन्य अभाव लगेगा, यानी एक पुद्गल द्रव्य के वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य के वर्तमान पर्याय में जो अभाव है उसको अन्योन्य अभाव कहेंगे। तो फिर एक द्रव्य के पुद्गल पर्याय के अभी वर्तमान पर्याय की भूतकाल की पर्याय में क्यों नहीं आप अन्योन्य भाव लगा रहे हैं? वहां तो प्राग भाव है, ख्याल में। ये उज्ज्वला की जो पुस्तक है ना, कारण कार्य रहस्य, उसमें चार अभाव के एक दो तीन चैप्टर्स हैं, पढ़ लेना, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। और कभी भी जाते आते आपके क्या बोलते हैं ट्रेन में पढ़ते रहना, बैठने को जगह मिली तो। नहीं, आपको तो मैं कहूंगा बहुत टाइम मिलता है, बस बैठो आराम से पढ़ते जाओ, आसपास में जो बोलता होगा उसके साथ मत बोलो, बहुत अभ्यास होगा। अब तो ऐसा समझते कि नहीं, इधर ही बैठ के हम बराबर पढ़ेंगे। अब आगे यहाँ क्या बात हो रही थी? हाँ जी, हाँ। एक परमाणु नी अवस्था ने बीजो परमाणु न करी शके तो तेना कार्य ने आत्मा करे एक केम बनी शके? क्योंकि विजातीय है ना, वो सजातीय थे परमाणु परमाणु, यहाँ तो परमाणु यानी पुद्गल और जीव। आवो भेदाभ्यास जेने वर्ते छे ते धर्मात्मा पुरुष कहे छे, हूँ तो शुद्ध एक चैतन्य स्वरूप ज्ञाता दृष्टा प्रभु आत्मा छू, अने आजे दयादान व्रत आदि विकल्प उठे छे ते अनात्मा छे, तेवो मारा स्वरूपभूत नथी, अने तेवो मने पोसाता नथी, यानी पोसाता नथी, यानी समझ गए ना आप लोग? नहीं समझे? आई कांट टॉलरेट इट, ऐसा कहते हैं, हमको अनुकूल नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते, परवड़ता नहीं, बराबर। केम के तेवो दुख रूप छे, दुखकारी छे, माटे हूँ ते समस्त कर्मनो त्याग करीने निज आत्म स्वरूप मा आत्मा थी ज निरंतर वर्तु छू। आहा, आत्मा थी ज वर्तु छू, एटले शू के पर थी के राग थी पर, यानी अनिमित्त कहो या अन्य देवगुरु शास्त्र जो भी आपको लेना ले लो, કે રાગથી આત્મસ્વરૂપમાં લીન થાય છે એમ નહીં, પણ પોતે સ્વરૂપ સન્મુખ થયેલા પોતાના ઉપયોગથી જ સ્વ સ્વરૂપમાં વર્તે છે. અલિંગ ગ્રહણ ગાથા 172 પ્રવચન સારના છઠ્ઠા બોલમાં આવે છે કે લિંગ દ્વારા નહીં, અને ચિહ્ન કોઈ હોવે ઇસકે દ્વારા નહીં, પણ સ્વભાવ વડે જેને ગ્રહણ થાય છે તે અલિંગ ગ્રહણ છે. અલિંગ ગ્રહણ યાને જિસકે ચિહ્ન કે દ્વારા ગ્રહણ નહીં હોતા હૈ. આ રીતે આત્મા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાતા છે એવા અર્થને પ્રાપ્તિ થાય છે. જોયું, આત્મા સ્વભાવ વડે જ જેનું ગ્રહણ અનુભવન થાય તેવો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાતા છે. આહા હા, અહીં કહે છે હું મારા સ્વભાવના પુરુષાર્થથી જ અંદર આત્મામાં સ્થિર વર્તું છું. લ્યો, આ ચારિત્ર દશા, આ મુનિ દશા, આહા હા, હવે આ ગઈ ને. પુરુષાર્થથી જ આત્મામાં સ્થિર વર્તું છું, એ કિસકી બાત હૈ? મુનિયોં કી બાત હૈ. ઓર ઉની કો ચારિત્ર દશા બતાઈ હૈ. આ પ્રમાણે મુનિરાજ પોતાના અતિન્દ્રિય જ્ઞાન સ્વભાવના અનુભવમાં સ્થિર રહે છે અને રાગનો અનુભવ છોડી દે છે. આને ચારિત્ર અને મોક્ષ માર્ગ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ભૂતકાળમાં કરેલા કર્મને 49 ભંગપૂર્વક મિથ્યા કરનારું પ્રતિક્રમણ કરીને જ્ઞાની આત્મ સ્વરૂપ આત્મામાં લીન થઈને જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મામાં લીન થઈને નિરંતર ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માનો અનુભવ કરે તેનું આ વિધાન એટલે વિધિ છે. લ્યો, આ પ્રતિક્રમણની વિધિ. અભી યહાં ફિર સે વહી બાત આઈ. દેખો, ભૂતકાળમાં જે કંઈ શુભાશુભ કર્મ કર્યા હતા તેનો 49 ભંગપૂર્વક ત્યાગ કરીને, અભી વહાં બતાય ને કૃતકારિતા અનુવદના મન વચન કહે છે, મેં જો કુછ ક્યા હો તો ક્યાં કર્મ બાંધા હો ઉસકો મેં ભાવ કર્મ જો ક્યા હો. તો 49 ભંગપૂર્વક ત્યાગ કરીને તેનું મમત્વ છોડીને નિજ જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ આત્મામાં લીન થઈ તેમાં જ રમે તેને ભગવાને પ્રતિક્રમણ કહ્યું છે. આહા હા, નિરંતર નિજ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માનો અનુભવ કરે તે પ્રતિક્રમણ છે, આ વિધિ છે. હવે કહે છે મિથ્યા કહેવાનું પ્રયોજન આ પ્રમાણે છે. જેવી રીતે કોઈએ કહેલા ધન કમાઈને ઘરમાં રાખ્યું હતું પછી તેના પ્રત્યે મમત્વ છોડ્યું ત્યારે તેને ભોગવવાનો અભિપ્રાય ન રહ્યો, તે વખતે ભૂતકાળમાં જે ધન કમાયો હતો તે નહીં કમાયા સમાન જ છે. જો આ દૃષ્ટાંત કહ્યું. હવે કહે છે તેવી રીતે જીવે પેલા કર્મ બાંધ્યું હતું પછી જ્યારે તેને અહિતરૂપ જાણીને તેના પ્રત્યે મમત્વ છોડ્યું અને તેમાં તેના ફળમાં લીન ન થયો ત્યારે ભૂતકાળમાં જે કર્મ બાંધ્યું હતું તે નહીં બાંધ્યા સમાન મિથ્યા જ છે. અર્થ સ્પષ્ટ છે એમ કે પૂર્વે કર્મ બાંધ્યું હતું તે હું નહીં અને તેનું ફળ આવ્યું તે પણ હું નહીં એમ જાણી તેનું મમત્વ છોડી દીધું અને સ્વસ્વરૂપમાં લીન રહ્યો તો જે કર્મ બાંધ્યું હતું તે નહીં બાંધ્યા સમાન મિથ્યા જ છે. લ્યો, આવી પ્રતિક્રમણની વિધિ છે. આ રીતે પ્રતિક્રમણ કલ્પ અર્થાત પ્રતિક્રમણનો વિધિ સમાપ્ત થયો. હવે ટીકામાં આલોચના કલ્પ કહે છે હું વર્તમાનમાં કર્મ કરતો નથી કરાવતો નથી, અન્ય કરતો હોય તેને અનુમોદતો નથી મનથી વચનથી કાયાથી. આ પ્રમાણે સર્વ 49 ભંગ સમજવા, મૂળ પાઠમાંથી સમજવા, આ રીતે પ્રતિક્રમણના જેવા જ આલોચનાના પણ 49 ભંગ કયા એ હમ કલ દેખેંગે. તૈયારી કરકે આના પડકે આના. જાવાણી કે જ્ઞાન તૈ સુજે લો કાલો સોવાણી મસ્તકનમો સદા દેતો.